पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 16 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवसाहूणं नमियोणदन्तजिनम् अनन्तनाणेन दिट्ठसौवट्ठं कम्मपदेशविहत्तिम् वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयदेवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुंगी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम सन्निकर्ष देख रहे हैं। नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के सन्निकर्ष देखने के बाद जघन्य प्रदेश विभक्ति का सन्निकर्ष हम देख रहे हैं और उसमें हम मार्गणा में देख रहे थे। हम अभी 73 पृष्ठ पर आ गए हैं, 73 पर, और उसमें हमने कल जो पढ़ा था 116 नंबर का पॉइंट 72 नंबर पर देवगति में, वहां से लेके फिर नरक तिर्यंच मनुष्य गति में हमने देख लिया है। देखो तो कहते देवगति में देवों में सामान्य तिर्यंचों के समान भंग है, यानी जहां मिथ्यात्व का जघन्य है वहां अन्य की क्या पोजीशन होती है। देखो थोड़ा ओग से ले लेते हैं पहले, फिर गति की बात करेंगे। आप थे नहीं ना उससे। ये जघन्य का प्रकरण 62 पृष्ठ से शुरू होता है, 62 से। वहां वो नीचे से तीसरा पैराग्राफ है, जघन्य का प्रकरण है, सेकंड लाइन। मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 62 पेज। सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व 11 कषाय और 3 वेद की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। इसको किस तरह से लगाना सोचना उसको हम देखेंगे। पहले में पहले ये सोचो कि मिथ्यात्व की जघन्य कब होती है।
ना ना,
मिथ्यात्व की क्षपित कर्मोशिक।
अच्छा प्राणी, सॉरी,
क्षपित कर्मोशिक से आया है और फिर वो 2 सागर काल तक समय दृष्टि रहा है, उसमें विसंजना वगैरह सब ले लेना। फिर अंत में जाके उसने क्षपणा की, तो क्षपणा का अंतिम समय 1 निषेक बाकी है तब उसका जघन्य होता है। तो उसकी जब जघन्य है तो सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो की अजघन्य है, क्योंकि अभी उसके तो उसमें तो मिथ्यात्व का द्रव्य आया है, वो तो ज्यादा हो गया है। 11 कषाय यहाँ संज्वलन लोभ को छोड़ दिया है, तो 11 कषाय का क्या होता है, तो अजघन्य होती है। अजघन्य तो कितनी अधिक है, तो असंख्यात गुणी अधिक है। अभी ये असंख्यात गुणी किससे कंपेयर करना है, सम्यक तो अभी एक एक प्रकृति को लेते हैं। जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है वहां सम्यक्त्व का असंख्यात गुणा अधिक है। हम पहले की बात पढ़ रहे हैं फिर से, 62 पृष्ठ पर जघन्य का प्रकरण है, वहां ले जाते ना ओघ में। तो जहां मिथ्यात्व का जघन्य है वहां सम्यक्त्व का अजघन्य है, तो वो अजघन्य है वो उसके जघन्य से कितना अधिक है, उसके यानी सम्यक्त्व के जघन्य से कितना अधिक है। तो सम्यक्त्व का जघन्य कब होता है, वो क्षपित कर्मोशिक लंबे काल समय दृष्टि रहा, फिर मिथ्यात्व में आया लंबे काल में उद्वेलना की, उसका अंतिम समय। वहां जितने प्रदेश है उससे
असंग।
अभी ये जो क्षपणा कर रहा है और मिथ्यात्व का जघन्य हो गया है उस पोजीशन पर, वो कितना ज्यादा है तो असंख्यात गुना ज्यादा है। अब उस पोजीशन पर सम्यक मिथ्यात्व का वो भी असंख्यात गुना ज्यादा है, उस पोजीशन पर 11 कषायों का वो भी असंख्यात गुना ज्यादा है, क्योंकि 11 कषायों का भी अपना अपना क्षपणा में जघन्य होगा। ख्याल है ना, कहाँ कौन सी जघन्य होती, और तीन वेद की भी अजघन्य होगी क्योंकि उसका भी अपना अपना जो जघन्य है वो अलग अलग पोजीशन पर।
या जघन्य के साथ जघन्य द्रव्य का ही कंपेरिजन चल रहा है?
नहीं, एक को जघन्य रखना
हाँ, और दूसरा का जब जघन्य होगा
हाँ,
उसके साथ
उसके साथ उसके अपने जघन्य के साथ कंपेयर करना, मिथ्यात्व के जघन्य के साथ नहीं कंपेयर करना। जब मिथ्यात्व का जघन्य है तो सन्निकर्ष यानी उसके साथ उस समय अन्य कर्मों की क्या पोजीशन है तो उसका अजघन्य है, तो अजघन्य है तो उसके अपने जघन्य से कितना ज्यादा है ऐसा सोचना है। यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा। तो उनको तो असंख्यात गुणा अधिक कहा, अब उसी के आगे क्या लिखा है, लोभ संज्वलन और छह नौ कषायों की भी अजघन्य होती है। जैसे इनको अजघन्य कहा वो भी अजघन्य है, फिर भी वो कितनी ज्यादा है, असंख्यात वे भाग अधिक है, क्योंकि उसका जघन्य कहाँ होता है,
संज्वलन लोभ का
अदक प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में होता है
और ये सपना में
सपना में होता है, इसलिए उनके अपने जघन्य से यहाँ कितना है ज्यादा तो असंख्यात का भाग ही अधिक है, ये बात सिद्ध होती है। ऐसे वो आगे इसी पर चर्चा समाधान वगैरह बहुत चली थी, और फिर हमने ये तो ओग में तो इतना है, ये तो मिथ्या सम्यक्त्व का है, सॉरी मिथ्यात्व के जघन्य के साथ लिया। 64 पेज पर नीचे 100 नंबर का पॉइंट है, वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का जहाँ जघन्य है वहाँ लगाया। तो सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य कब होता है, वो उद्वेलना वाला, उस समय सम्यक्त्व की क्या पोजीशन होगी अश्विन भाई?
सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य उसका जघन्य होगा,
सम्यक्त्व का भी जघन्य होगा?
नहीं, अजघन्य होगा,
सत्ता ही नहीं होगी, उद्वेलना की बात है ना, क्योंकि इसकी उद्वेलना बाद में पूरी होती है, पूरी होने के समय को लिया है। तो अभी उसके तो कोई चर्चा ही नहीं है, सम्यक तो है ही नहीं है। अब वहां पर मिथ्यात्व क्या होगा, अजघन्य ही होगा क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, वहां बंध भी चल रहा है। 15 कषाय और 3 वेद वो अजघन्य है, और कितनी ज्यादा है तो असंख्यात होगी। वैसे लोभ संज्वलन छनों का शायद उसको अलग ही निकाला, उसके कितनी ज्यादा है,
असंख्यात
भाग अधिक। और सम्यक्त्व का तो नियम से अवभक्ति वाला है वहां पर, ये तो सम्यक मिथ्यात्व के साथ हमने सन्निकर्ष बताया। अब सम्यक्त्व का जहाँ जघन्य है वहाँ सम्यक मिथ्यात्व है कि नहीं है,
है।
कितना है,
असंख्यात,
असंख्यात गुना ज्यादा है, क्योंकि अभी उसकी उद्वेलना होने में पल्ले का असंख्यात भाग बाकी है, उसमें स्थिति कांडक वगैरह सब चले गए, उद्वेलना कांडक जिसको कहते हैं, और उसमें भी बाकी तो ऐसा ही लगाना,
असंख्यात गुना और ये
असंख्यात गुना और असंख्यात भाग। अब फिर 101 नंबर पर अनंतानुबंधी क्रोध की जहां जघन्य है वहां मान माया लोभ क्या होगा, जघन्य भी होगा अजघन्य भी होगा, अनंतानुबंधी का उसकी जघन्य कब होती है, विसंजना में,
अंतर्गुण तक बंद किया और पीछे 132 सागर तक
वेदक वो जहाँ लास्ट में जाके उसने फिर विसंजना की
जगन्ना।
तो उसका जघन्य है उस समय अनंतानुबंधी मान माया और लोभ की क्या पोजीशन है, जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी, यदि अजघन्य है तो कितना ज्यादा होगा, तो अनंत वा भाग ज्यादा होगा या असंख्यात वा भाग अधिक होगा, उनके आपस में चार में जो संबंध बताए। अब उस पोजीशन पर मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व वगैरह वगैरह क्या होगा, तो अभी वो तो अजघन्य है, वो कितना है, असंख्यात्वे भाग अधिक होती है, क्योंकि अभी यहाँ इस पोजीशन पर अभी उसने विसंजना की है, इस पोजीशन जो मिथ्यात्व का प्रदेश है अंतर्मूर्त जाके वो क्षपणा करेगा, तो उससे कितना यहाँ ज्यादा है, तो असंख्यात्व भाग भी ज्यादा है। यहाँ असंख्यात गुना ज्यादा नहीं कहा।
यहाँ पे ये 12 कषाय भी 11 कषाय भी असंख्यात में भाग अधिक ही लिया।
हाँ, असंख्यात और भाग अधिक होता है। अब नीचे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जहाँ जघन्य है उसकी जघन्य कब होगी? उसके क्षपण, वहाँ अन्य सात कषाय, सात कषाय ने अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, नौ कषाय ने, सात कषाय, क्योंकि उस आठ में से एक को हमने अलग निकाला और उसके साथ अन्य सात की कंपेयर कर रहे हैं, कषायों की बात है। उनकी जघन्य भी हो सकती है, अजघन्य भी हो सकती है, क्योंकि एक साथ क्षपणा हो रही है उनकी, और अजघन्य होगी तो वही अनंत व भाग अधिक या असंख्यात व भाग अधिक होगा। अब वहां पर जहां अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य है वहां तीन संज्वलन और तीन वेद वो अजघन्य है, क्योंकि हमने देखा नौवे गुणस्थान में पहले आठ कषायों की क्षपणा होती है उस पोजीशन पर। अभी ये तो तीन संज्वलन अभी आगे जाके उनका
क्या, तो ये क्रोध का जो जघन्य लिया वहाँ पे सात कषायों का जघन्य नहीं होता है, अजघन्य भी होता है।
हाँ,
क्योंकि सपना तो साथ में होती है,
एक साथ होती है, फिर भी उन्हें प्रदेशों में थोड़ा अंतर होगा, एक भी प्रदेश ज्यादा है तो हम कहेंगे अनंत व भाग अधिक है। तो बनते समय सभी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें आपस में भी संक्रमित होते रहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है। क्रोध मान माया लोभ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो उसमें कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो तीन संज्वलन और तीन वेदों की जो अजघन्य है वो असंख्यात गुणी अधिक होती है। हम वे पहले की बात फिर दोबारा देख रहे हैं, आपको पेज नंबर मिला कि नहीं मिला? 65 पेज पर अभी मैं पढ़ रही। हाँ, ये बात ख्याल में आई? यहाँ तीन संज्वलन जो है
असंख्यात में,
क्योंकि किसकी हमने यहाँ जघन्य लिए, अप्रत्याख्यान की जघन्य लिए, अब यहाँ संज्वलन क्रोध वगैरह वो बहुत सारा माल पड़ा है, अब आगे जाके उनके स्थिति कांडक वगैरह हो गए और अंत में जाके उसका जघन्य होगा। लोभ संज्वलन और नौ कषाय वो तो हमेशा जैसे असंख्यात व भाग अधिक हो, और अन्य का अविभक्ति वाला है, कौन से अन्य का अविभक्ति वाला है? जो अप्रत्याख्यान वाला क्रोध है तो अन्य कौन से मोहिनी कर्म की सत्ता नहीं है?
चार अनंतानुबंधी सम्यक तो सम्यक विद्या,
यानी दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी, सात की सत्ता नहीं है। अब अन्य जो सात कषाय है ना आपस में इसी तरह से लगाना, हमने क्रोध को लगाया अप्रत्याख्यान क्रोध को, तो आठ कषाय में से एक एक को मुख्य रखना, उसकी जघन्य बताना, उसके साथ अन्य की जघन्य हो या अजघन्य हो ये सब एप्लीकेबल होगा सबके साथ। अब संज्वलन में घटा रहे, क्रोध संज्वलन की जहां जघन्य है वहां मान और माया संज्वलन की नियम से अजघन्य है, जो कितनी ज्यादा है तो असंख्यात गुणी ज्यादा है। ये बात ख्याल में आती है, क्योंकि अभी मान माया में सारा द्रव्य पड़ा है वहां पर, और उसकी कंपेयर उसके अपने जघन्य से करनी है जब उसकी सपना का अंतिम समय होगा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा है। लोभ संज्वलन की हमेशा ऐसे असंख्यात व भाग अधिक है। अब यहाँ छह नौ कषाय को क्यों नहीं लिया है?
क्रोध की जब भी होती है उसके,
हाँ, जब क्रोध की उसके पहले उसकी क्षपणा पूरी हुई है इसलिए अन्य प्रकृतियों की सत्ता नहीं है, यानी जब क्रोध की जघन्य कहेंगे वहाँ वेद भी नहीं है,
तीन वेद भी नहीं।
मान संज्वलन की जहाँ जघन्य है वहाँ माया की अजघन्य है और वो असंख्यात गुणी अधिक है, और लोभ की असंख्यात वे भाग अधिक है, क्योंकि लोभ की जघन्य कहाँ होती है? तो अधिक प्रवृत्त कर्म के अंतिम समय में, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो असंख्यात व भाग ही अधिक है, और बाकी जो जो है वो एक निषेक वाला है वो उनका जघन्य है, और उसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ असंख्यात गुणा अधिक होता है। अजघन्य का डिफरेंस क्यों है वो सोचना। माया की जहाँ जघन्य है वहाँ लोभ की अजघन्य है। अब क्या कहा यहाँ पर? असंख्यात गुणी कहा। क्यों? जहाँ माया का जघन्य है, माया का सारा द्रव्य लोभ में आया है, और जो पहले लोभ का था उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये असंख्यात गुणा हो गया। अब तक असंख्यात का भाग अधिक सब जगह किया था, परंतु जहाँ माया का जघन्य है वहाँ पर यह असंख्यात गुणा होता है। देखो लोभ में कौन कौन सा द्रव्य आया है?
छह नौ कषाय।
पहले पहले सारे नौ कषाय का द्रव्य क्रोध में आया था।
पुरुषवेद
क्रोध का, हाँ पुरुषवेद भी छह नौ नौ कषाय सब ले लेना भी ये वो पहले छह का और वेदों का भी इसमें आया। अरे क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में, मोनी का जितना जो है चारित्र मोनी का पूरा द्रव्य लोभ में आया सब सब उसका क्षय हुआ। अनंतानुबंधी का भी पहले आया थी, पहले आया ही था, क्योंकि क्षय जो होता है वो संक्रमण से ही होता है। क्षय होना है इसका अर्थ क्या है? थोड़े अपने स्वरूप से चले जाएगी, सत्ता में है परमाणु, क्योंकि स्थिति बंदी उतनी उनकी, वो तो फिर तो नहीं गए हैं, ये संक्रमण से ही सारा होता है। थोड़ा थोड़ा उदय होकर चला जाएगा जब जब तक उसका उदय है, बाकी क्या होगा? बाकी सारा अन्य प्रकृति रूप संक्रमित होता है, पर रूप होकर ही संक्रमित नष्ट हो जाता है। नहीं, शुरू में क्या हुआ था? सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। देखो अभी हम ऐसा कहेंगे, कितना चारित्र मुनि की बात है, जितना चारित्र मुनि के खाते में आया है आधा तो नौ कषाय में जाता है, आधा कषाय में जाता है, यानी हर एक कषाय में हम एक एक ले लेंगे तो चार भाग हुए कषाय में, तो चार भाग नौ कषाय में जाएंगे। जब नौ कषाय की क्षपणा होती है वो चार भाग सारे क्रोध में आए, तो क्रोध का पहला एक और ये पांच मिलकर छह हो गए, सॉरी चार और उसका एक पांच हो गए। क्रोध के मान रूप होते तो उसके पांच, अभी ये इसका एक मान का अपना वो छह हो गए, वो फिर माया में आया और फिर लोभ में आया, तो सारा आठ का माल वो सारा लोभ में आ गया। और वहां पर तो जब तक बादर लोभ है तो वहां उसका बंध भी है ही, क्योंकि जहां माया का जघन्य है, माया का जघन्य कब है? नौवे गुण स्थान में। बादर लोभ का उदय चल रहा है और बाकी सब का उदय मिट गया है, तो अकेला लोभ बन रहा है। उस पोजीशन पर जितना समय प्रबद्ध है, कितने कर्म बन रहे हैं नौवे गुण स्थान में? मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति नहीं,
ज्ञानावरण दर्शनावरण,
हाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण
अंतराय वेदनीय
वेदनीय, आयु को छोड़ो ना, बाकी सब बन रहे हैं, है ना? बाकी सब बन रहे हैं, मोनी भी बन रहा है कि नहीं बन रहा?
मोनी में खाली लोभ बन रहा है ना,
हाँ अकेला लोभ। तो मोनी के खाते में जितना द्रव्य आता है हम वन सेवन समझे ना, अभी समझने के लिए
सब लोभ रूप है,
पूरा मोलोभ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा। यानी यहाँ का पूरा मोहनी का द्रव्य अकेले लोभ में आ रहे हैं, नया तो आ ही रहे समय प्रबद्ध, और पुराना जो सत्ता में बंधा हुआ वो सारा लोभ रूप हो गया है। इसलिए यहाँ जो उसकी असंख्यात गुणा कहा उसको कल में, अब ये तो हो गया। अब जहाँ लोभ संज्वलन की जघन्य है, अब लोभ संज्वलन की जघन्य है तब सत्ता किस किस की है? अधः प्रवृत्तकरण का अंतिम समय
11 कषाय है उसके साथ,
हाँ उसके साथ 11 कषाय है,
तीन वेद
मात्र क्षपक इन्हें क्षायिक समय दृष्टि आया है, तो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिन्न नहीं है,
तीन वेद और छह नौ,
बाकी 12 कषाय में से हम कंपेयर कर रहे हैं तो अकेले लोग के साथ हम देख रहे हैं, तो अन्य 11 कषाय है, तीन वेद है, चिन्हों को शायद बाकी तो सब है ना वहाँ पर। तो जहाँ संज्वलन का जघन्य है वहाँ 11 कषाय और तीन वेदों की नियम से अजघन्य होती है, वो कितनी अधिक है? तो असंख्यात गुणी अधिक है, क्योंकि अभी हम और नीचे आए ना इस पोजीशन पर, उन 11 कषायों का अपना अपना जघन्य तो ऊपर जाके क्षपणा के अंतिम समय में होता है, इस पोजीशन में उसका कितना द्रव्य है, तो असंख्यात गुना अधिक है। और छह नौकरशायों की वो अजगण्य है, वो तो उसको असंख्यात का भाग अधिक।
जैसे हमने अर्ध प्रवृत्त करण में लोक संतुलन का जब ये जगन्य होता है तभी चार नौकरशाय का तो बंद चालू है, आठवें गुणस्थान के अंत तक बंद है, तो उसका भी असंख्यात में भागी होगा कि असंख्यात गुणा?
वो असंख्यात में भागी होता है। छह नौकरशायों का हर जगह हमने असंख्यात का भाग ही देखा है अधिक,
क्योंकि यहाँ पे बंद चालू है तो समय प्रबंध समय प्रबंध हर समय लेता है।
हाँ लेता है, फिर भी इसलिए उसकी कंपैरिजन में उसके अपने जघन्य के साथ कंपेयर करना है। छह नौकरशाय जब जाते हैं तो उसका अपना उदय नहीं है, उदय तो उसका आठवें में बंद हो गया है, और फिर बाद में उसकी क्षपणा फाली रूपे नहीं, संक्रमण से ही होती, संक्रमण में भी फालिया तो होती है, इसलिए उसके अपने जघन्य के साथ कंपेयर करेंगे तो यह असंख्यात का भाग ही अधिक होता है। अब और आगे 102 नंबर में स्त्रीवेद की जहां जघन्य है वहां तीन। अब स्त्रीवेद की जघन्य कब है? स्त्रीवेद की क्षपणा में, उस समय कौन कौन से सप्ताह में?
चार संगलन है पुरुष।
अब स्त्रीवेद की जघन्य है, अगर स्त्रीवेदी जीव है या नपुसक वेदी जीव है उसको सोचना पड़ेगा, तो अन्य वेद भी है वहाँ पर, पुरुष वेद है यहाँ पर,
छह नौकरशाय है
और चार संगलन है, छह नौकरशाय भी है। तो जहाँ स्त्रीवेद की जघन्य है वहाँ तीन संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अजघन्य है, जो कितनी है तो असंख्यात गुणी अधिक है। लोभ संज्वलन छ वो हमेशा जैसे असंख्यात व भाग अधिक है, और नपुसक वेद की मुख्यता से भी ऐसा ही कहना है, स्टेटमेंट यही होगा उसके लिए भी। देखो जब स्त्री वेद की लिया है तब नपुसक वेद को यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि स्त्री वेद की जगह ने तब नपुसक वेद की क्षपणा हो चुकी है। अब जब नपुसक वेद की जघन्य कहेंगे
स्त्रीवेद भी
तो स्त्रीवेद उसके एक समय पहले चला गया है। अब पुरुष वेद का जहाँ जघन्य है, पुरुष वेद का जघन्य हमने बहुत बार देखा था ना,
नवक समय प्रबद्ध।
हाँ, नवक समय प्रबद्ध का अंतिम एक ही खाली बाकी है, तब की बात है उसकी, जघन्य योग से बंधा हुआ जब उसकी अंतिम फाली खिरती है तब लेना उसको,
चार संज्वलन है।
तब क्या क्या बाकी है? तो चार संज्वलन है, उसमें से तीन संज्वलनों की अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक है, क्योंकि अभी सारा ये पुरुष वेद वगैरह नौकरशायों का माल उनमें चला गया है, और ऐसे भी उनके स्थिति कांड किसके आगे होने वाले हैं, तो इस पोजिशन पर असंख्यात गुणा अधिक है। लोभ संज्वलन की वो असंख्यात अभाग अधिक। अब हास्य के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हास्य की जहां जघन्य है वहां तीन संज्वलन और पुरुष वेद की अजघन्य है जो असंख्यात गुणी अधिक है। लोभ संज्वलन की हमेशा जैसे असंख्यात अभाग अधिक है। पांच नौकरशाय यानी हास्य के साथ छह को हम एक साथ लेते हैं, उसमें से हास्य को अलग निकाला तो अन्य की जघन्य भी हो सकती है अजघन्य भी हो सकती है। अब एक साथ क्षपणा करने वाले हैं तो अजघन्य होगी तो कितनी होगी?
असंख्यात
हो, अनंत वा भाग अधिक
या
असंख्यात वा भाग अधिक। तो यहाँ तक तो हमने ओग से देखा, अब अलग अलग गतियों में बताएंगे। देखो नारकियों में अभी यहाँ ऐसा सोचना कब होता है, तो नारकियों में मिथ्यात्व कब होता है जघन्य? तो क्षपित कर्मांशिक से उलट कर आया है, नरक में उत्पन्न हुआ है, अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करेगा, अनंतानुबंधि की विषय योजना करेगा, आयु के अंत में एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में जाएगा, जाने के पहले सम्यक्त्व का अंतिम समय वहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है। उस पोजिशन पर अन्य कर्मों की क्या अवस्था होगी ये बात बताना। तो उसमें वहाँ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजगण्य जो असंख्यात गुणी होती है, क्योंकि सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की जगह ने कब है वो दीर्घ उद्वेलना वाले की होती है, इसलिए यहाँ उसकी असंख्यात गुनी जाता है। 12 कषाय और 9 कषाय उनकी अजगण्य है, वो कितनी अधिक है? असंख्यात अभाग अधिक है। इस पर भी वो चर्चा समाधान बहुत चला था। देखो यहाँ अनंतानुबंधी को नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है? विसंयोजन वाला जीव लिया था क्योंकि हमको मिथ्यात्व का जघन्य चाहिए था। तो अनंतानुबंधी विसंयोजन करने से मिथ्यात्व का जघन्य कैसे होगा?
सत्ता में है और जो
विसंयोजन के समय में भी सभी कर्मों में स्थिति कांडक घात होती है, इसलिए इसका भी जघन्य होगा, यानी उसकी भी गुण श्रेणी ज्यादा होगी ना। ये गुण श्रेणी के जो स्थान अलग अलग बताए हैं, तो सामान्य वहां का वेदक सम्यक दृष्टि है और कोई अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, उस समय उसकी गुणश्रेणी हुई थी। विसंयोजना के काल में गुणश्रेणी, स्थिति कांडक सब कुछ होगी, क्योंकि वहां 3 करण होते हैं। तो जहां जहां 3 करण होंगे वहां वहां वो गुणश्रेणी रूप चलेगी नीचे, इसलिए हमको मिथ्यात्व का जगन्य मिला था। इसलिए जब मिथ्यात्व का जगन्य नारकियों में देखा, वहां अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं है। जहाँ सम्यक्त्व की जगन्य होगी, कब? वो दीर्घ उद्वेदन वाला, वहां मिथ्यात्व वगैरह की अजगन्य होगी, वो असंख्यात्व भाग अधिक है। वहां सम्यक मिथ्यात्व की भी अजगन्य होगी, जो अनंत असंख्यात गुणी अधिक होगी। अनंतानुबंधी की भी अजगन्य होगी, क्योंकि उद्वेलना वाला जीव है नहीं। अनंतानुबंधी की जघन्य तो विसंयोजना में होती है, अब ये उद्वेलना के काल में उसकी अजघन्य होगी, कितनी ज्यादा होगी? असंख्यात गुणी ज्यादा। और जब सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य है, वहां क्या लेना है? सम्यक्त्व की वहां सत्ता ही नहीं होगी, वहां पर मिथ्यात्व क्या होगा? अजघन्य होगा, बाकी सभी अजघन्य होगे वहां पर। वो कितना होगा ज्यादा? तो असंख्यात भाग अधिक होगा, और अनंतानुबंधी की असंख्यात गुणी अधिक होगी। वैसे उन्होंने अभी अन्य कर्मों पर भी घटित किया है। देखो अनंतानुबंधी की क्रोध की जहां जघन्य है, वहां बाकी के अजघन्य है। क्रोध की जघन्य कब है? अभी वो विसंयोजना वाला लेना, विसंयोजना भी कब कराना है? पहले वो क्षपित कर्मोंशिक से लाए, वो सारे पहले कंडीशंस पूरे करके यहाँ आया है, नरक में आया है। यहाँ आने पर सम्यक तो प्राप्त किया है,
आयु के अंत
पूरे आयु में सम्यक दृष्टि रहा, और अंत में जाके विसंयोजना की, मिथ्यात्व में जाने के पहले, क्योंकि सम्यक दृष्टि रहा तो पहले निषेक गल गए और बाद में उसने विसंयोजना की। उस पोजीशन पर बाकी के तो अजगण्य हो गए, कितने अधिक? तो असंख्यात में भाग अधिक हो। उस पोजीशन पर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व अजगण्य होगी, वो असंख्यात गुणी होगी। और अनंतानुबंधी क्रोध की बात कर रहे, वह अनंतानुबंधी मान माया लोभ क्या होगा? जगण्य भी हो सकता है, अजगण्य भी हो सकता है। अब नीचे बीच में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के साथ कंपेयर कर रहे, इसका जगण्य कब होगा?
क्षपित कर्मों से तो आयु के अंत में,
आयु के अंत में
नहीं, आयु के
शुरू में होगा, पहले समय में होगा, पहले समय में। अब वहां मिथ्यात्व और 7-9 कषाय, 7-9 कषाय में प्रतिपक्ष वाले लेना है, क्योंकि पहले समय में जघन्य है और इन प्रतिपक्ष वाले कर्मों की एक अंतर्मूर्त बाद जघन्य होगी, तो यहाँ पर उनकी अजघन्य होगी। ख्याल में आती बात? यानी भय जुगुप्सा को छोड़कर 7-9 कषाय लेना है आपको, वो कितना ज्यादा है? तो असंख्यात तो भाग ज्यादा है, क्योंकि वो 7 प्रतिपक्ष वालों की एक अंतर्मूर्त के पश्चात जगने होने वाली है। क्यों? अभी प्रतिपक्ष का बंद चल रहा है तो इनकी थोड़ी थोड़ी खिर जाएगी। कितने खिरेगी अंतर्मूर्त में? कितने निशे खिरे? तो जितना है उसका असंख्यात तो भाग कम होने वाला है, तो अभी कितना ज्यादा है?
असंख्यात
भाग ज्यादा है। और इसी पोजीशन पर यानी अप्रत्याख्यान की जहाँ जघन्य है पहले समय में, वहाँ सम्यक सम्यक मिथ्या तो अनंतानुबंधी की और जघन्य है, कितनी ज्यादा है, असंख्यात गुनी अधिक।
ये नरक तक बात चल रही है,
नरक की बात चल रही है, आदेश की बात चल रही है।
वरण तो सम्यक दृष्टि जो लेना पड़ेगा ना, जघन्य विभक्ति वाला
शपित कर्मोशिक आया है ऐसा हाँ। लेना ना
हाँ, अप्रत्याख्यानावरण ले सकते हैं।
और अप्रत्याख्यानावरण को क्योंकि समय दृष्टि के भी बंद रहा है, और जो बंधेगा तो योग से बंधेगा ज्यादा हाँ। तो योग ज्यादा हो सकता है, बाद में वो उसका बढ़ेगा। तो जघन्य तो पहले समय में घटित होगा, बारह कषायों का तो जघन्य पहले समय में घटित होगा।
तो मिथ्या दृष्टि को होगा उससे समय दृष्टि को कम होगा कि ज्यादा होगा, इसे मेरा क्वेश्चन था।
देखो अप्रत्याख्यान समय दृष्टि को भी बंद रहा है, मिथ्या दृष्टि को भी बंद रहा है,
पर जो समय
दृष्टि
को बंद
रहा है वो योग से बांधेगा, तो समय दृष्टि अति योग से बांधेगा, तो इसलिए पहले समय में ही घटित किया जो कुछ उसने पहले कम करके आया है। शपित कर्मोशिक पूर्व भाव में उसको समय दृष्टि रखा था ना अधिक लंबे समय तक, नारकी में पहले समय में लेना है ना, नहीं उनका कहना है बाद में समय दर्शन होने के बाद उसका जघन्य हो सकता है।
गुण श्रेणी हो जाएगी ना, क्योंकि अंतर्गुण गुण श्रेणी निर्जरा सम्यक को प्राप्त करेगा,
यानी सम्यक को प्राप्त करने पर आप कह रहे हैं पर सम्यक को प्राप्त करेंगे फिर भी वहाँ योग के कारण जो नया बंध है, देखो ये हमें देखना है अनंत मार्गणाओं में जघन्य देखना है ना वो किसका
अप्रत्याख्यानावरण
अप्रत्याख्यानावरण का जरा देखना मनुष्यों में 389 पर होगा
जो
आदेश से नारकियों में 389 है। पर आना भी इसमें होगा। देखो ये लास्ट शब्द है 389 पर, 12 कषाय वह जुगुप्सा का जघन्य किसके होता है। 390 पर आना भी पहली लाइन में, अन्यतर क्षपित कर्मांशिक जीव विपरीत जाकर नारकियों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उसका जघन्य होता है। और जो पुरुष वेद हास्य रति वगैरह जो चार है यानी पांच कर्मों का अंतर्मूर्त के बाद जघन्य होगा
हाँ।
ए, वही तो उनका कहना है
नहीं, बाद में नहीं।
उनका कहना है मिथ्या दृष्टि को जगन्य के समय दृष्टि को जगन्य
ऐसा भी रखते
हैं ऐसा कहना है। ये पहले ही समय
पहले
में जगन्य
तो मिथ्या दृष्टि को ही लेना है
बाद वो पहले समय में तो मिथ्या दृष्टि है ही, परंतु आपका कहना था अभी उसने समय को प्राप्त किया तो उसका जगन्य होगा कि नहीं होगा यही कहना था ना,
क्योंकि वहाँ पे गुण श्रेणी निर्जरा हो जाती है,
परंतु नया बंध भी है, नया बंध है यहाँ पर सम्यक तो प्राप्त करेगा तो भी नया बंध है, और उत्कृष्ट योग में करेगा तो और अधिक बंधेगा उसका। और पहले समय में जो जघन्य है अब अंतर्मूर्त तक तो सम्यक तो नहीं प्राप्त करेगा
हाँ।
तो अंतर्मूर्त तक तो अधिक बांधेगा ही मिथ्या तो अवस्था में, तो उसका अजघन्य ही है वहाँ पर, यानी पहले समय के बाद अजघन्य हो ही जाएगा उसका। तो हमने अप्रत्याख्यान का देखा ना, उसके साथ अन्य को कंपेयर किया, तो जहां अप्रत्याख्यान का जघन्य यानी कब है पहले समय में, तब सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अजघन्य होगा,
असंख्यात
कितना ज्यादा है तो असंख्यात गुणी ज्यादा है। वहां पर अन्य जो 11 कषाय 12 कषाय पहले समय में जघन्य होते हैं और भय जुगुप्सा भी पहले समय में, उस समय में अन्य 11 कषाय और भय जुगुप्सा की क्या पोजीशन है, तो जघन्य भी होगी अजघन्य भी होगी,
दो स्थान पर
अजघन्य होगी तो
दो स्थान
अनंतवा भाग और असंख्यात भाग दो स्थान पतित हैं, वैसे अन्य में भी लगाना। अभी स्त्री वेद की जघन्य कब होती है, क्षपित कर्मांशिक, अभी जहाँ मिथ्यात्व की जगन्य होती है ना, उसके बाद अंतर्मूर्त जाना है। तो मिथ्यात्व की जगन्य का क्षपित कर्मांशिक आया, नरक में उत्पन्न हुआ, समय दर्शन प्राप्त किया, अनंत अनुबंधी की विषय योजना की, तेतीस सागर के अंत में जाके मिथ्यात्व में आया। तो मिथ्यात्व में आने के पहले मिथ्यात्व का जगन्य। अब मिथ्यात्व में आया और अंतर्मूर्त तक प्रतिपक्ष का बंध किया, उसके अंतिम समय में स्त्रीवेद का जगन्य होगा। तो उस पोजीशन पर मिथ्यात्व क्या हो जाएगा? अजगण्य हो जाएगा, क्योंकि अंतर्मूर्त में अभी मिथ्यात्व का नया बंध किया है उसने। मिथ्यात्व का जगन्य तो अंतर्मूर्त पहले था, उसके पश्चात अंतर्मूर्त के बाद स्त्रीवेद का जगन्य हुआ है। तो बाय दैट टाइम उसका अजगण्य हो गया, तो कितना हो जाएगा? असंख्यात का भाग अधिक हो जाएगा नया जो बंधने के कारण आया है। 12 कषाय और 8-9 कषाय वो भी अजगण्य ही है, क्योंकि 12 कषाय तो पहले समय में जगन्य थे, उसके कंपेयर में अभी अगर लेते हैं तो यहाँ अजगण्य। स्त्रीवेद को छोड़कर बाकी 8 कषाय और 9 कषाय की भी यही पोजीशन है, अजगण्य। अंतर्मूर्त के लास्ट समय में, लास्ट में यानी मरने के समय में नहीं, मिथ्यात्व में आने पर प्रतिपक्ष का जब तक बंध चल रहा है, प्रतिपक्ष का अर्थ क्या है? नपुसक वेद, पुरुष वेद का जब बंध चल रहा है उसका, तब उसके स्त्रीवेद का जघन्य हुआ उस अंतिम समय। अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त दोनों बंधेंगे
क्या? आयु के अंत में लेना है क्या? आयु के शुरुआत में अंतर्मूर्त पश्चात लेना है?
नहीं,
रूप से आया है,
क्षपित कर्मांशिक आया है और पूरे समय दृष्टि रहा है।
अच्छा,
समय दृष्टि रहा तो उसने तो पुरुष वेद का बंध किया है।
हाँ।
हमेशा स्त्रीवेद, पुरुष नपुसक वेद को और मिथ्यात्व को एक साथ लिया होगा। और मिथ्यात्व का तो सम्यक्त्व के अंतिम समय में, और ये दो वेदों को तो एक अंतर्मूर्त आगे जाके। तीरेंजों में भी हमने ऐसा ही घटित किया था, वहां भी एक लंबी वो तीन पल्ले वाली ली, उसमें भी जाके अंत में वो मिथ्यात्व का जगन्य हुआ था। अब जहाँ स्त्रीवेद का जघन्य है वहाँ सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्या होगी? अजघन्य है। कितनी ज्यादा है? असंख्यात गुणी ज्यादा, क्योंकि इनका अपना उद्वेलना में या विसंयोजना में होता है। उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कितना है? असंख्यात गुणा ज्यादा है। अब नीचे आना, 69 पेज पर लास्ट, हास्य की जहां जघन्य है, वहां मिथ्या तो 12 कषाय और 7-9 कषाय, यानी हास्य को छोड़कर, हास्य और रति को छोड़कर साथ लेना, क्योंकि हास्य और रति एक साथ बनती है ना हमेशा। नियम से अजघन्य होती है जो असंख्यात व भाग अधिक होती है। वहाँ सम्यक सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अजगण्य होती, कितनी ज्यादा है? असंख्यात गुणी ज्यादा है। अब हास्य के साथ रति है तो रति की क्या पोजीशन है? जगन्य भी होती है, अजगण्य भी, वो भी दो स्थान पतित है। अब जब अरति की जगन्य है तो अरति के साथ शोक को रखना और बाकी अन्य को निकालना, 7-9 कषाय को, वो भी ऐसे ही कहेंगे उसके बारे में। यानी अभी जो हम नारकियों में घटित किया है वही सातवें नरक में घटित होगा, क्योंकि उसकी मुख्यता से हमने किया है, मिथ्यात्व का जगन्य हो गया। ऊपर के नरकों में मिथ्यात्व का जगन्य कराना है तो नरक में उत्पन्न कराना, लंबी आयु वाला रखना, सम्यक्त्व के साथ रखना, और उसको फिर मिथ्यात्व में नहीं लाना, सम्यक दृष्टि रखना लास्ट समय तक ऊपर के नरकों में, क्योंकि सातवें नरक में तो मिथ्यात्व में आना अनिवार्य है। ऊपर तो सम्य दृष्टि रखना और अंत समय में स्त्रीवेद, नपुसक वेद और मिथ्यात्व, इनका जगन्य लेना अंतिम समय। देखो, पहली से छठी पृथ्वी तक इसी प्रकार भंग है, इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाला जीव अनंतानुबंधी चतुष्क की अविभक्ति वाला है। ये क्यों कहा ऐसा? जयबेन आप कह सकते हैं? हाँ, उसने विसंवेदना की है क्योंकि नरक में उत्पन्न हुआ है, अंतर्मूर्त में समय दृष्टि हुआ, विसंवेदना की, और भव के अंत में मिथ्यात्व का भी जघन्य, स्त्री वेद का भी जघन्य और नपुंसक वेद का भी जघन्य।
ये स्त्रीवेद और नपुंसकवेद में मिथ्यात्व में जाएगा और पीछे प्रतिपक्ष का बंद करेगा तो अंतर्मूर्त पश्चात हो जाएगा, तो तभी
ना, अभी मिथ्यात्व में भेजना ही नहीं उसको,
सातवें नरक।
अच्छा,
की बात है,
सातवें नरक में आप कह रहे
तो वहाँ पे प्रतिपक्ष का बंद करता है तो अंतर्मूर्त के पश्चात ये
नहीं, पर वहाँ सातवें नरक में तो उसको लिया है, अनंतानुबंधी को लिया है हमने, असंख्यात गुना लिया है।
हाँ, तो यहाँ पे अनंतानुबंधी की अविभक्ति वाला है,
पहले से छठे नरक तक के लिए लिया है, पहले से छठी नरक तक, तो उसमें मिथ्यात्व में लाना ही नहीं है, समय दृष्टि रखना है, इसलिए उसको अनंतानुबंधी का अविभक्ति वाला। मिथ्यात्व में आता तो उसी समय उसका विभक्ति वाला बन जाता, नया बंध भी होता, संक्रमण भी होता। देखो, तिर्यंचों में एक विशेषता है, स्त्रीवेद नपुंसक वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक् मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की नियम से अविभक्ति वाला होता है। क्यों लिया ऐसा?
तो सम्यक् दृष्टि लेना पड़ेगा ना।
कौन सा? क्षायिक समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच में उत्पन्न हुआ है उसको लेना है। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि में पहली पृथ्वी के समान बंगे, जैसे ऊपर कहा था ना पहली से छठी पृथ्वी तक, वैसे उसमें ले लेना। बाकी उन्होंने पंचेंद्रियों के भेदों में अलग अलग घटित किया था, वैसे मनुष्य में, देवों में, ये हम अपना सारा रिवीजन हुआ, अभी हम देवों में देख रहे थे। 72 पृष्ठ पर लास्ट पैराग्राफ, देवगति में देवों में सामान्य तिर्यंचों के समान बन गए, जैसे देवों में भी जो क्षायिक समय दृष्टि उत्पन्न होगी उनमें भी वो जघन्य वगैरह घटित होगा। अब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों में पहली पृथ्वी के समान बन गए, यानी वहां उत्पन्न हो के बाद समय को प्राप्त करेगा और आयु के अंत में उसका जगन्य होगा। सौधर्म, ईशान कल्प से लेकर उपरिम ग्रह वेग तक, दोनों में नहीं चाहिए, देवों में चाहिए ना, देवों में। हाँ, कल करेक्शन किया था आपने, देवों में, सामान्य देवों के समान मंगे, वो दोनों में लिखा है ना, वहां देवों में करना। और अनुदेश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की नियम से जघन्य होती है, वहां तो सारे समय दृष्टि है, तो समय दृष्टि है तो मिथ्यात्व का जघन्य कब होगा?
आयु
के अंत में, क्योंकि मिथ्यात्व की सत्ता वाले लेना है ना। तो पहले जो कुछ है क्षपित करना, उषिक वगैरह सब घटित करना, चार बार कषायों को उपशमा कर आया है, आयु के अंत में जाकर उसने उसका जघन्य, और उनके लिए सम्यक्त्व का, सम्यक मित्रत्व का जघन्य वही होगा।
ये विषय योद्धा वाला जीव लेना।
हाँ, विषय योजना कराओ ना तो और जघन्य हो जाएगा। तो सम्यक्त्व, सम्यक मित्रत्व का जघन्य भी हो सकता है, जघन्य भी हो सकता है, दोनों लेना उसको। यदि अजगण्य है तो अनंत अभाग अधिक है, असंख्यात अभाग अधिक है। 12 कषाय, 9 कषाय की अजगण्य होती है, जो असंख्यात भाग होती है अधिक, क्योंकि उनकी जगण्य तो पहले समय में घटित था, यहाँ पर ज्यादा होगी। अब यहाँ तक तो अपना पहला सब रिवीजन हो गया, अभी 117 नंबर जो है वहाँ से हम पढ़ेंगे। हमारे लिए अच्छा हुआ, अश्विन भाई के लिए हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, हमारा पक्का हो गया। अनंतानुबंधी क्रोध की जघन्य प्रदेश, ये देवों में बात चल रही है। तो अनंतानुबंधी की जघन्य किस पोजीशन पर होगी?
अंतर्मुख में जैसे अरे सहयोजना की और वापस 132 सागर। नहीं, यहाँ पे तो 132 नहीं ले सकते।
नहीं नहीं, यहाँ तो देव की उत्कृष्ट आयु लेना है यहाँ।
हाँ, आयु कैसे हो जाएगी?
यानी कैसा लेना? अनंतानुबंधी क्रोध की जघन्य प्रदेश भक्ति वाले पहले तो भी संयोजना में लेना है। तो ऐसा भी लेते हैं, पहले तो मिथ्यात्व में जन्मा है,
हाँ।
अंतर्मुहूर्त में फिर
संयोजना
करके
मिथ्यात्व
में गया है, फिर नया अंतर्मुख के लिए बंद किया उसने,
और
फिर सम्यक तो प्राप्त किया,
हाँ।
फिर लंबे काल तक समय दृष्टि रहा और अंत में जाके विसंयोजना की। तो विसंयोजना के अंतिम समय में उसका जगन्य होगा। तो उस पोजीशन पर सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्व, सम्यक मिथ्यात्व, 12 कषाय और 9 कषाय नियम से अजगन्य होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। अब उसके साथ अनंतानुमंदी मान माया लोभ क्या होगा? जघन्य भी हो सकता है, अजघन्य भी हो सकता है। और जघन्य होगा तो दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत वे भाग अधिक होती है या असंख्यात वे भाग अधिक होती है। इसी प्रकार अनंतानु कहाँ पर अनंतानुबंधी क्रोध का सम्यक के साथ आया, फिर विसंयोजना की, फिर मिथ्यात्व में चला गया, और फिर ऐसा लेना है ना आपको, क्योंकि मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रहेगा। तो अनंतानुबंधी पहले विसंयोजना की ने सब नष्ट कर दिया, अब मिथ्यात्व में गया इसलिए अंतर्मूर्त तक ही उसने अनंतानुबंधी के परमाणु बांधे हैं। पहले की अगर लेते सत्ता में तो बहुत सारी अंत कोड़ा कोड़ी की थी सत्ता। वो सारे पहले घटित किए, अभी देवों में आने की बात है। यानी आपको ऐसा कहना 132 सागर का घूमता घूमता लास्ट समय में लेना है, वो 132 सागर का अंतिम समय यहाँ घटित करना, वैसा भी ले सकते हैं। उसके लिए भी ऐसा है, पूर्व अन्य कहीं पर उसने एक बार विसंयोजना करके संयोजना करके फिर 132 सागर उसके चल रहे थे, और उसका अंतिम समय देवों में आकर हुआ है उसका, और तब उसने
उसका कम हो जाएगा।
नहीं, मगर वो तो विसर्जना करके आया नहीं, 132 सागर समाप्त होने को आए हैं और यहाँ पर उसने विसर्जना की, ऐसा लेना
शायक होने को जाना।
हाँ, शायक होने को जाना, देवों में नहीं कहना।
सॉरी तो वापस अंतर्मुट में पीछे मिथ्यात्व में जाएगा?
नहीं, ऐसी जरूरत नहीं, यहाँ का अनंत
132 सागर के अंत में लेंगे।
हाँ,
तो अंतर्मुट पहले वो विश्वयुद्ध करेगा तभी उसकी हो जाएगा, और पीछे वापस मिथ्यात्व में जाएगा नियम से, नहीं तो शाही
से जाएगा। अगर शाही करना है तो फिर मनुष्य में तो 8 वर्ष उसकी वहाँ।
हाँ,
तो उतना कम करके उसको पहले विसंयोजना कराओ तो चलेगा। यानी उसका 132 सागर का काल मनुष्य में जाके पूरा करा दो।
132 सागर तक वो सब्जेक्ट के साथ घुमा है और अंत में जाके शाही देव में उत्पन्न हुआ, विश्वयोद्धा की, और पीछे अंत
में मिथ्यात्व में जाएगा वो।
हाँ, तो मिथ्यात्व में जाएगा तो ये विश्वयोद्धा करेगा तभी उसका मिनिमम
होगा। और वो विसंजना के बाद आपको शाही करना है?
नहीं, शाही
तो मनुष्य में विसंजना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उतना काल उसके पास नहीं है। या 132 सागर पूरा मत रखो, 10 साल पहले उसको विसंयोजना कराओ, तो फिर विसंयोजना के साथ वो मनुष्य में जन्मेगा और बाद में क्षायिक करेगा। पूरा नहीं करेगा, देवों में कैसा पूरे हो, या तो मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा, पूरा तो हो सकता है। यानी किसके लिए? क्षायिक कराने के लिए, मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है। आपका प्रश्न ऐसा है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव समय दृष्टि है, देव है, तो मनुष्य में वो 24 की सत्ता के साथ जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा?
जन्मेगा।
कर भी सकता है अभी, मगर वो कर सकता है कि उसने पहले भी संयोजना की है और अभी जाके वो क्षायिक होगा। हाँ, वो मनुष्य का जब 8 वर्ष पूरा हो जाएगा तब उसका 132 पूरे करें।
60 साल पहले उसको देव भाव छोड़ना पड़ेगा।
अरे ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको सोचना पड़ेगा। सबसे जघन्य हमने
132
ओघ में जब घटित करना है, अनंतानुबंधी का ओघ में घटित करना है। अब देवों में तो देखो निकाल, वहां तो ऐसा है ना, लंबे पूरी लाइफ टाइम तक उसको रखना और फिर अंत में जाके उसने विसंयोजना की। कहां अभी हमने देखा था
92 में नीचे 92 पर
देखो, शपित कर्मांशी 28 प्रकृतियों वाला सत्कर्म वाला वेदक समय दृष्टि
अंत में
दीर्घ आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर वहाँ भवस्थिति का पालन कर स्तोक जीवितव्य के शेष रहने पर अनंत अनुबंधी चतुष्पद की विसंयोजना करने के लिए उद्यत हुआ है। अभी वो उसकी जो आयु है वो 132 सागर में कहाँ पर फिट होती है उसका कोई सवाल ही नहीं है ना।
नहीं, ये तो ऊपर के नहीं,
ये मिथ्या तुम्हें ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आयु के अंत में अंतर्मूर्त पहले वो विसंजना करेगा, समय दृष्टि रहकर चला जाएगा मनुष्य में। वो तो अलग हम चर्चा कर रहे थे कि मिथ्या तुम्हें जाना जरूरी है क्या, कब जरूरी होगा यदि 132। वो तो हमें ऐसा लिया था कि कम से कम उसके पास अनंतानुबंधी हो, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट उसका ऐसा ही लिया है कि पूरे दीर्घ। हाँ,
क्योंकि ऊपर के स्वर्ग में तो मिथ्यात्व में जाएगा नहीं, तो वहाँ पे वो
अकेले लंबी आयु को लेना है। देव इन जनरल अगर लेना है तो वहाँ सर्वार सिद्धि में उत्पन्न कराओ
33 सागर के अंदर
मौसिक वाला, और अंत में उसने विसंयोजना की, तब उसका जगह नहीं होगा। देव इन जनरल की बात है, जहाँ तक मिथ्या तो में जा सकता है तो वहाँ 31 सागर वाला लेना। हाँ,
और लास्ट में
शुरू में उसको मिथ्या तो में घुमाना, फिर लास्ट में उसकी विसंयोजना करा। इसी प्रकार यानी दीर्घ आयु वाले ने 33 सागर में अंत में वेदक समय दृष्टि उत्पन्न कराओ। द्वितीय ऑप्शन चलेगा कि नहीं चलेगा?
नहीं, उसको तो सत्ता ही नहीं है।
द्वितीय ऑप्शन वाला अनंत अनुबंधी की सत्ता बिना आया है। हाँ, तो उसके भी विसंयोजना करने का सवाल नहीं है, इसलिए वेदक समय दृष्टि को उत्पन्न कराया वहां पर। इसी प्रकार अनंत अनुमति मान माया लोक की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। देखो ये क्या हुआ है, 117 की पहली लाइन में लास्ट में सम्यक तो है ना, उसके आगे रफार है, और नीचे की लाइन में जो सन्निकर्ष है उसका रफार ऊपर चला गया और वहाँ का कॉमा नीचे आया है। सम्यक के बाद कॉमा चाहिए था और सन्निकर्ष के लिए रफार चाहिए था। सन्निकर्ष है नीचे छठी लाइन,
एकदम नीचे के लिए, वो पारा में,
वो उसके ऊपर रफा रहे ना, वो सम्यक्त को लगा और वहां का कॉमा नीचे आया। ऊपर कॉमा चाहिए सम्यक्त के बाद और रफार नहीं चाहिए। हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे। अब देवों में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जघन्य प्रदेशी भक्ति वाले जीव के, अब ये पहले समय में होगा। 11 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा की जघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है। देखो अन्यत्र पुरुष वेद को अंतर्मूर्त के बाद रखा, अब यहाँ सम्यक के साथ उत्पन्न कराओ तो पहले समय में होगा उसका। यदि अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है वह दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत वे भाग अधिक होती है या असंख्यात वे भाग अधिक होती है। 6-9 कषायों के नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। इसी प्रकार 11 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। एक के ऊपर लगाया वही स्टेटमेंट इन अन्य के लिए लागू होगा। स्त्री वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 12 कषाय और 8-9 कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। स्त्री वेद की जघन्य आयु के अंत में
रहना
सम्यक दृष्टि का। इसी प्रकार नपुसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसके लिए भी वही स्टेटमेंट होगा। हास्य की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 12 कषाय और 7-9 कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भाग अधिक होती है। देखो जैसे पुरुष वेद का तो पहले समय में घटित किया, परंतु हास्य रति शोक रति प्रतिपक्ष का बंध हो भी सकता है, इसलिए अंतर्मूर्त के बाद होगा। अंतर्मूर्त तक बाकी जो जघन्य रूप से आए थे वो अजघन्य हो जाएंगे, कितना ज्यादा हो गए असंख्यात। अब हास्य के साथ रति के नियम से जघन्य होती है और अजघन्य होती है। यदि अजघन्य है तो दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत वे भाग अधिक होती है या असंख्यात वे भाग अधिक होती है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना, पहले हमने हास्य की मुख्यता से देखा वही बात रति में लागू होती है। जहाँ अरति की जघन्य प्रदेश भक्ति वाले हैं वहाँ 12 कषाय 7-9 कषायों की नियम से अजघन्य होती है जो असंख्यात विभाग अधिक होती है। अंतर्मूर्त के बाद होगी उसकी जघन्य। शोक की नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत विभाग अधिक होती है या असंख्यात विभाग अधिक होती है। इसी प्रकार शोक की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। देखो जहाँ वेद की जघन्य कही है ना, एक शायिक समय दृष्टि लिया, क्योंकि वहां मिथ्यात्व की बात ही नहीं की। शायिक समय दृष्टि और 33 सागर वाला लिया होगा, क्योंकि उन सभी में मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का नाम ही नहीं है। समय मिथ्यात्व शायिक समय दृष्टि करके यहाँ लाया उसने। हाँ, त्रिवेद की जघन्य 6-9 कषाय की जघन्य सब में उसको तो लिया ही नहीं है। वो प्रत्याख्यान उसमें भी केवल इनको ही लिया है सबको। एक शायिक समय दृष्टि और 33 सागर का पहला समय लिया। अभी वो कितना भी शायिक है तो कितना भी हो उसके कुछ लेना देना नहीं है। पहले समय में वो जघन्य अन्य जो है वो स्त्री वेद में तो अंतिम समय, और पुरुष वेद अन्य 12 कषाय भय जुगुप्सा के लिए पहला समय। हाँ देखो अभी विशेषार्थ 74 पृष्ठ पर हम वो सेंटर वाला विशेषार्थ देख रहे हैं। पहले जघन्य स्वामित्व का निर्देश कर आए हैं उसे देखकर ओवर आदेश से जघन्य सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए। जघन्य स्वामित्व हम छठी पुस्तक में देखा है, इसलिए बार बार उसको खोल कर देखते हैं। जहाँ कुछ विशेषता है या तंत्रांतर से भिन्न मत का निर्देश किया है, तंत्र अंतर अन्य तंत्र, एक होता है मंत्र, एक होता है यंत्र, एक होता है तंत्र यानी टेक्निक, भिन्न मत का निर्देश किया है वहाँ वीरसेन स्वामी ने उसका अलग से विचार किया ही है। ये जो कोई उपदेश चले आते हैं भिन्न भिन्न आचार्यों के ही होते हैं, उसमें हम तो निर्णय नहीं कर सकते कि ये सच्चा है या झूठा है, भले उसमें से कोई एक सत्य हो सकता है परंतु ना केवली है ना शुद्ध केवली है, तो उसका निर्णय या उसके हम अपना
कुछ
ये ठीक है ये गलत है ऐसा नहीं कह सकते। वीरसेन स्वामी ने भी कभी ऐसा ढाढ़स नहीं किया, तो हम क्यों करें। इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ। ये आगे वाला अनुगम अनुयोग द्वार बहुत अच्छा है। तो भाव अनुयोग जो है भावानुगम, भाव सर्वत्र उदयिक भाव है, इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। ये हम लगाएंगे सभी मार्गणाओं में औदयिक भाव है, इस प्रकार भाव समाप्त हुआ। या मोहनी की बात चल रही ना, उसमें सर्वत्र औदयिक भाव, जहाँ उसकी सत्ता है प्रदेश, सत्ता ने उदय ही है, उदय को ही औदयिक भाव कहते हैं, परंतु यहाँ सत्ता वालों को भी ले लिया है। अल्प बहुत्व ये ऊपर, अप्पा बहुवम यानी इस अनुयोग में अल्प बहुत्व कहेंगे। यह सूत्र सुगम है। सौवत्थवम अपच्चाखाण माणे उपकस्स प्रदेश संतकम्मम। अभी उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्मम किसका सबसे कम है, इन्हें प्रदेश सत्कर्म में सबसे कम किसका है, अभी अलग अलग प्रकृतियों में लगा रहे
मौनी की 28।
हाँ, तो कहते अप्रत्याख्यान मान में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म सबसे स्तोक है।
यहाँ पे ये जो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग, उसी तरह वो डिस्ट्रीब्यूशन कम कम नहीं होता जाता है।
हाँ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग पद्धति से होता है ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तभी वो अलग पद्धति से होता है। देखो सातवीं पृथ्वी में ये उत्कृष्ट प्रदेश किसको होता है, सातवीं पृथ्वी में गुणित कर्मांशिक नारकी के 33 सागर आयु के अंतिम समय में विद्यमान रहते हुए यद्यपि अप्रत्याख्यान मान का द्रव्य उत्कृष्ट हुआ है तो भी वह स्तोक है। स्तोक है अल्प, सबसे कम। हाँ, प्रदेश विभक्ति
उत्कृष्ट प्रदेश संख्या
नंबर ऑफ परमाणु
yeah.
मान के जहाँ मैक्सिमम है। हाँ, बहुत अच्छा। अल्प क्या लेना और उत्कृष्ट क्या लेना, अभी हमारे पास सभी कर्म है अलग अलग, मोहिनी की बात चल रही है तो मोहिनी की प्रकृतियाँ कितनी है, 28 प्रकृतियों में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट जो कुछ है वो लगाएंगे यहाँ पर, या यहाँ उत्कृष्ट की बात बता रहे हैं, अभी हम देखेंगे क्या क्या है। उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्मों में अभी अल्प बहुत तो बता रहे हैं, उत्कृष्ट में वही बता रहे, उत्कृष्ट अभी सबका है, सबका अपना अपना उत्कृष्ट अलग है, तो किसी के उत्कृष्ट में लाख होंगे, किसी के उत्कृष्ट में 10 लाख होंगे, उसके अपने उत्कृष्ट में, उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो ये गुणित कर्मांशिक जीव जो चापे नरक में जो अंत में जाके गुणित कर्मांशिक होता है,
तभी वहाँ उसने सभी का जो मिथ्या तो सभी कषाय सबका उत्कृष्ट किया है, उसने सबका उत्कृष्ट तो किया है पर उसमें अभी नंबरिंग करेंगे। हाँ, उसमें मान अप्रत्याख्यान मान सबसे कम है। हाँ, जहाँ कहाँ होगा, अब यहाँ तो ये कहाँ होगा वो भी बता दिया उन्होंने। ना वो नीम कांजीर वगैरह वो अनुभाग में है, यहाँ प्रदेश लेना है।
परमाणु
नंबर ऑफ परमाणु, बस। अभी जो हम प्रदेश विभक्ति छठी से सातवीं पुस्तक में देख रहे हैं, उसको उत्कृष्ट कहेंगे। अब सबका, आपका भी उत्कृष्ट है, जैसे हमारे हर एक के पास अपना अपना कोई मैक्सिमम पैसे है, जो हमने जीवन में जब भी कभी प्राप्त किए थे वो मैक्सिमम हम उसको कहेंगे। तो आपका जो मैक्सिमम है, आपका मैक्सिमम है, आपका मैक्सिमम है, आपका मैक्सिमम होगा 1 अरब, और हमारा मैक्सिमम होगा 1 लाख, आपका मैक्सिमम होगा 10 करोड़, कितना, 25 करोड़। अच्छा तो उसमें हम अल्पबहुत लगा रहे, कब होगा क्या होगा उसकी बात नहीं, जब कभी होगा तो उसमें अल्पबहुत्व क्या है, तो उसमें कम से कम किसका है उसको पहला नंबर ले रहे, अल्पबहुत्व, अल्प से बहुत्व की ओर बताएंगे। और ये उत्कृष्ट में यहाँ बता रहे पहले
सर, यहाँ पे जो ये गुणित कर्मों से की बात है, जब भी उत्कृष्ट द्रव्य होगा तभी मान में सबसे कम मान होगा,
जिनका जहाँ कहीं पर भी उत्कृष्ट है उन उत्कृष्ट में मान का सबसे कम है। देखो ये हमने पढ़ा ना, अप्रत्याख्यान मान का द्रव्य उत्कृष्ट हुआ है तो भी वह स्तोक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव, और 75 पृष्ठ, कोधे उक्कस्य पदे से संत कम्मम विशेषाह्यम, उससे अप्रत्याख्यान क्रोध में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। पूर्वोक्त सूत्र से अप्रत्याख्यान इस पद की अनुवृत्ति होती है, अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी होती है, अप्रत्याख्यान शब्द बार बार नहीं कहेंगे वो, इसलिए अप्रत्याख्यान क्रोध में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्मा विशेष अधिक है, ऐसा संबंध करना चाहिए। विशेष का प्रमाण कितना है, अप्रत्याख्यान मान के द्रव्य में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर जो 1 भाग लब्धावे उतना है, यानी उतना अधिक है, उतना ही द्रव्य नहीं, उतना अधिक है, अधिक कितना है उन्होंने पूछा था, विशेष का प्रमाण कितना है पूछा था, विशेष का प्रमाण उतना है बराबर है उनका, परंतु हम समझना है वो विशेष का प्रमाण है, अधिक का प्रमाण बता रहे इतना है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान, सूत्राविरुद्ध, सूत्राविरुद्ध यानी सूत्र अविरुद्ध आचार्य वचन से जाना जाता है। मायाए उक्कस्य पदे से संत कम्मम विशेषाह्यम, उससे अप्रत्याख्यान माया में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। देखो यद्यपि एक ही स्थान में प्रदेश सत्कर्म उत्कृष्ट हुआ है तो भी, एक ही समय की बात है नहीं, आप क्रोध के प्रदेशाग्रह से माया का प्रदेशाग्रह आवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो 1 भाग लब्धा आवे उतना अधिक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। आगे लोभे उक्कस्य पदे से संत कम्मम विशेषाह्यम, उससे अप्रत्याख्यान लोभ में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, कितना अधिक है, आवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो 1 भाग लब्धावे उतना अधिक है, यानी किसमें भाग देना, माया के द्रव्य। 55 माणे उक्कस्य पदे से संत कम्मम विशेषाह्यम, उससे प्रत्याख्यान मान में, अभी अप्रत्याख्यान के सब 4 हो गए, प्रत्याख्यान मान में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, कितना अधिक है, लोभ के द्रव्य में आवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर वहां जो 1 भाग लब्धा है उतना अधिक है, क्योंकि यह भिन्न प्रकृति है। ये लोभ द्रव्य कहाँ, वहाँ पर कुछ अप्रत्याख्यान लोभ नहीं कहा?
वो तो आगे वाले से ही भाषा अवली का सुखित विभाग अधिक होगा ना, अप्रत्याख्यान
लोभ द्रव्य में लिखा है, वहाँ प्रदेश आग्रह में लिखा, क्या पता नहीं कुछ, ठीक है लोभ द्रव्य में अवली का संख्या तो भाग है। हाँ लोभ द्रव्य इतना ही लिया उन्होंने, अभी वो लोभ द्रव्य ऊपर का भी ले सकते हम, और प्रत्याख्यान लोभ का हाँ कंटिन्यूटी में उसी को लेंगे, परंतु क्योंकि यह भिन्न द्रव्य प्रकृति है कहने की, मैंने वो प्रत्याख्यान में प्रत्याख्यान में आ गए। कोदे उपकस पदे से संत कम विशेष आई, उससे प्रत्याख्यान क्रोध में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, यह सूत्र सुगम है।
यह प्रमाण नहीं बताया कितना
माया है उपकस पदे से संत कम विशेष आई, उससे प्रत्याख्यान माया में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, यह भी सूत्र सुगम है। लोभस उत्कस प्रदेश संत कम्भम विशेषाह्य, उससे प्रत्याख्यान लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, यह सूत्र सुगम है। अब अनंतानुबंधी माणे उत्कस प्रदेश संत कम्भम विशेषाह्य, उससे अनंतानुबंधी मान में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, यह सूत्र सुगम है। कोदे उत्कस पदे से संत कम्भम विशेषाह्य, उससे अनंतानुबंधी क्रोध में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, यह सूत्र सुगम है। माया है उपकस पदे से संत कम्भम विशेषाह्य, उससे अनंतानुबंधी माया में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, यह सूत्र सुगम है। लोभे उपकस पदे से संत कम्भम विशेषाह्य, उससे अनंतानुबंधी लोभ में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, यह सूत्र सुगम है। वो कहते उस सम्मामिच्छते उपकस्य पदेश संतकम्मम विशेषाय,
ये वहां पे नहीं ले सकते ना, ये गुणित कर्मांशिक को लेना है, नहीं सम्यक मिथ्यात्व,
सम्यक मिथ्यात्व का जहां है, अभी हम ओग से बात कर रहे हैं तो कहां ज्यादा होगा
जो
क्षपण, हाँ वो गुणित कर्मांशिक वाला ही लेना, परंतु उसकी क्षपणा कराओ तो जब मिथ्यात्व का सभी द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाएगा तब लेना उसको। हाँ गुणित कर्मवशिक आया है, नरक से आया है, चार बहुत एक दो चार बहुत एक्सपीरियंस के करके आया है, और जल्दी में जल्दी उसने क्षपणा की है, दर्शन मुख की क्षपणा, हाँ 8 साल के बाद ही उसने क्षपणा की है, तो उससे सम्यक मिथ्यात्व में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। अब आगे लिखते हैं, क्योंकि सातवीं पृथ्वी में अनंतानुबंधी के लोभ के उत्कृष्ट द्रव्य में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे, उतना मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में अधिक पाया जाता है। ये हमने देखा ना मिथ्यात्व में से वो मिथ्यात्व का भी उत्कृष्ट करके आया था, अब क्षपणा के समय में उसने समय मिथ्यात्व रूप हुआ है तो उतना उसके ज्यादा हो गया उसमें। शंका, सातवीं पृथ्वी से निकलकर और त्रसकायकों में उत्पन्न होकर, यानी सातवीं से निकला एक तीर्यंश हुआ फिर एक इंद्रिय में जाएगा ही, गुणित कर्मांशिक वाला ही, वहां त्रस स्थिति को समाप्त करके पुनः एकेंद्रियों में 2-3 भव बिताकर, ये शंकाकार अभी पूछ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो पहले गुणित कर्मांशिक की पूरी विधि उसने की थी, वो त्रस पर्याय का उसका अंतिम भव था, नरक से निकलकर एकेंद्रियों में तो जा नहीं सकता, तो उसका एक भव वहां त्रस महीने संगी पंचेंद्रीय तीरंज हिंस्र वहाँ से केंद्रीय में गया।
दो तीन बहु
बिताकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर वहाँ अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष जाने पर सम्यक्त को प्राप्त करके मिथ्यात्व के द्रव्य के सम्यक मिथ्यात्व के ऊपर प्रक्षिप्त करने पर सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेशाग्रह होता है। ये तो स्टेटमेंट है, अभी इसकी शंका तो इसके आगे चलेगी। हो सकता है त्रस की स्थिति पूरी करके आया है 2000 सागर की पूरी की। अनिवार्य की बात नहीं है उसमें। हाँ ये यहाँ लिखा ना, 2-3 भव बिताकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ है। हाँ जनरली बात है।
इसे हमने देखा था ना कि पूरी त्रस की स्थिति बिताकर जो एकेंद्रीय में जाता है वो लंबे काल तक एकेंद्रीय में रहेगा,
रह सकता है की बात चले, यह नहीं रहने की बात नहीं है। मैक्सिमम असंख्या पुद्गल परिवर्तन है, एकेंद्रीय में आए वो तो हो सकता
है। 2000
लंबे काल में कौन जा सकता है उसके लिए वो कोई रूल्स बताए थे उन्होंने कहीं। गुणित कर्मोचित की बात चल रही है अपन। त्रस स्थिति पूरी होकर ऐसा किया है ना, त्रस स्थिति को समाप्त करके पहले एकेंद्रियों में से त्रस में लाया है गुणित कर्मोशिक, उसको वो सारे सारे आवास पूरे किए ना, योगा आवास भाव आवास वगैरह। ये तो उसने कहा कि वो सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमित होते हैं, है ना, परंतु यह द्रव्य अनंतानुबंधी लोभ के द्रव्य से विशेष अधिक नहीं हो सकता। ये उसकी शंका अभी पूछ रहे हैं, क्योंकि उस समय तक मिथ्यात्व के द्रव्य में से पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण समय प्रबद्ध सम्यक प्रकृति रूप से परिणत हो जाते हैं। और गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा प्रत्येक समय में असंख्यात गुणे समय प्रबद्धों का गलन हो जाता है। समाधान नहीं, क्योंकि इन दोनों प्रकारों से जो मिथ्यात्व का द्रव्य नष्ट होता है वह अनंतानुबंधी लोभ के द्रव्य में आवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण मिथ्यात्व प्रकृति विशेष के असंख्यात भाग मात्र देखा जाता है। यानी इतना ही उसका नष्ट हुआ है। कहते वह क्यों है, क्योंकि गुण संक्रमण भागार के द्वारा ये गुण संक्रमण है, गुणित प्रमाण में संक्रमण किसका किस में हो रहा है, मिथ्यात्व का समय मिथ्यात्व समय प्रकृति रूप हो रहा है। तो कितने प्रमाण में होता है, तो जितना द्रव्य है उसको गुण संक्रमण भागार के द्वारा भाग देकर जो एक भाग आएगा उतना भाग संक्रमित होता है, उसको कहेंगे गुण संक्रमण भागार। उसके द्वारा मिथ्यात्व के द्रव्य के भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण सम्यक्त्व का द्रव्य है। सम्यक्त्व में कितना द्रव्य संक्रमित होता है, तो मिथ्यात्व के द्रव्य को गुण संक्रमण भागार से भाग देने पर जो एक भाग का प्रमाण आया उतना द्रव्य संक्रमित होता है। और गुणश्रेणी के द्वारा नष्ट होने वाले द्रव्य का भागार गुण संक्रमण भागार को देखते हुए असंख्यात गुना है। आप कहेंगे ना गुणश्रेणी के द्वारा भी नष्ट हो रहा है, तो गुण संक्रमण भागार से गुणश्रेणी का भागार असंख्यात गुना है। तो गुणश्रेणी में नष्ट होने वाला द्रव्य ज्यादा है कि गुण संक्रमण से संक्रमित होने वाला द्रव्य ज्यादा है?
गुण संक्रमण से संक्रमित होने वाला द्रव्य ज्यादा है।
इनको बोलने दो ना। हाँ बोलो। यहाँ तो बता दिया उन्होंने, आपका क्या कहना है? समझाएंगे, उनकी बात छोड़ दो, वो कुछ भी गलत बता रहे हैं। देखो मिथ्यात्व का द्रव्य तो जितना है उतना ही है, संक्रमित कितना हो रहा है, हमारे पास मान लेते हम 1000 परमाणु है, संक्रमित कितना हो रहा है, तो संक्रमण का जो भागहार है वो भागहार हम मान लेते 5 है, तो कितने परमाणु संक्रमित हुए? 200, और उससे गुण श्रेणी का भागहार असंख्यात गुणा है तो 20 है। वो 5 भागहार था तो 200 परमाणु संक्रमित हुए और भागहार 20 है। तो गुण श्रेणी कितनी हुई? 20 से भाग दिया तो कितना आया? तो 85 आया ना। हाँ, भागहार जहाँ बड़ा है वहाँ द्रव्य कम है, तो गुण श्रेणी में जो द्रव्य, तो वो असंख्यातवा भाग प्रमाण गुण श्रेणी से नष्ट होता है और संक्रमित होने वाला ज्यादा
है।
इसलिए अनंत अनुबंधी के लोभ के द्रव्य से सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य विशेष अधिक है, यह सिद्ध हुआ। अब सम्मत्ते उत्कस्थ पदेश संतकम्मम विशेषायम, उससे सम्यक्त्व में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। शंका, सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य से सम्यक्त्व का द्रव्य विशेष अधिक घटित नहीं होता, एक क्यों? अभी उसकी कारण मीमांसा सुनेंगे। क्योंकि गुणित कर्मांशिक लक्षण से आकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर और 8 वर्ष बिताकर पुनः दर्शन मोह का क्षपण करने वाले उसके द्वारा मिथ्यात्व के द्रव्य के सम्यक मिथ्यात्व में प्रक्षित करने पर मिथ्यात्व का द्रव्य उत्कृष्ट होता है। पुनः उसके बाद अंतर्मूर्त काल तक गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य की निर्जरा करके पुनः अपने उत्कृष्ट द्रव्य के असंख्यात्व भागहीन सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य के सम्यक्त्व में प्रक्षिप्त करने पर सम्यक्त्व का उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? क्षपणा में क्या होता है? पहले में पहले मिथ्यात्व का द्रव्य अन्य दो रूप होता है, उसकी तो बात हो गई। अब सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य मैक्सिमम कब था? जब मिथ्यात्व की अंतिम पाली सम्यक मिथ्यात्व में आ गई, उसके बाद एक अंतर्मूर्त और चला जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व की क्षपणा पूरी हुई है, अंतर्मूर्त तो विश्राम लेता है, वहाँ भी वो गुण श्रेणी वगैरह कार्य चल रहा है, फिर दोबारा 3 करण परिणाम मांडेगा और फिर सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित होगा।
यहाँ पे तो ये जो अंतर्मूर्त विश्राम लेता है तभी गुण संक्रमण नहीं होता है ना?
क्यों नहीं होगा? गुण संक्रमण नहीं होगा, परंतु
गुण श्रेणी निर्जरा तो होगी,
गुण श्रेणी चल रही है और फिर सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में आया, तो उस अंतर्मूर्त में गल भी गया है, तो जितना पहले था द्रव्य उससे कम हुआ, ये इसका कहना है। तो ये भूल जा रहा है कि सम्यक प्रकृति ऑलरेडी थी ना वहां पर। अब देखेंगे आचार्य क्या कहते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट होने के बाद गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य निर्जीर्ण होता है, तो भी उस द्रव्य के निर्जीर्ण होने के पूर्व ही उससे सम्यक्त रूप से स्थित हुआ द्रव्य असंख्यात गुणा पाया जाता है। क्या कहते हैं?
यहाँ पे भी वही लगेगा ना, गुण संक्रमण भागार छोटा है और वो बड़ा है, इसलिए
नहीं, वो भाग नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? अभी ऑलरेडी जितना निर्जीर्ण होने वाला है उससे सम्यक्त में जितना माल था, देखो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व में हुआ है, अकेले सम्यक मिथ्यात्व में हुआ कि सम्यक प्रकृति रूप भी चला गया, कुछ दोनों में जा रहा था, तो जहाँ अभी ये जो अंतर्मूर्त प्रमाण काल में गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा जितना जाएगा उससे असंख्यात गुना ऑलरेडी सम्यक में है वहाँ पर सम्यक प्रकृति में, और इन एडिशन और सम्यक नित्यत्व का बाकी द्रव्य उसमें चला जाएगा
तो कम नहीं होगा,
तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उसका असंख्यात गुणा होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुण संक्रमण भागार असंख्यात गुणाहीन होता है। क्या कहना चाहते हैं? ये अपकर्षण भागार कहाँ से आया? गुण श्रेणी जो निर्जरा होती है या गुण श्रेणी की जो रचना होती है, तो वो गुण श्रेणी की रचना होती है ना, क्या होती है? ऊपर के निषेकों में से कुछ द्रव्य, पूरे निषेक नहीं, कुछ द्रव्य अपकर्षण होकर नीचे आते हैं, और अपकर्षित जो द्रव्य है कुछ उदयावली में दिया जाएगा, कुछ गुण श्रेणी में दिया जाएगा, और कुछ ऊपर दिया जाएगा। तो ये जो उसको कहेंगे कितना द्रव्य अपकर्षित होता है, तो अपकर्षण भागार से भाग देने पर जो संख्या आती है उतना द्रव्य अपकर्षित होता है। तो कहते हैं ये अपकर्षण का जो भागहार है उससे गुण संक्रमण भागहार असंख्यात गुणाहीन है। भागहार कम है, परमाणु ज्यादा है, यानी गुण संक्रमण होने वाले परमाणु ज्यादा है, अपकर्षण होने वाले परमाणु कम है। भागहार असंख्यात गुणाहीन है तो द्रव्य असंख्यात गुणा ज्यादा है, इससे उसके निर्जीर्ण होने वाले द्रव्य से यानी फिरने वाले जो द्रव्य है उससे असंख्यात गुणे होने की सिद्धि हो जाती है, यानी उससे वो ऑलरेडी वहाँ प्री एग्जिस्टिंग द्रव्य असंख्यात गुणा था, जितना निर्जीर्ण होने वाला है अंतर्मूर्त में उससे वहाँ सम्यक्त्व का द्रव्य जितना ऑलरेडी पड़ा है वो असंख्यात गुणा है। अब उसमें ये जाके और परमाणु मिल जाएंगे।
यहाँ पे भी ये जो अपकर्षण द्रव्य होता है वो जो नीचे जो उदयावली में जाता है वो तो असंख्यात भाग ही है, बाकी तो ऊपर ही जाएगा।
गुण श्रेणी में ज्यादा दिया जाता है,
गुण श्रेणी में तो असंख्यात भाग ही दिया जाएगा और बाकी का द्रव्य सभी ऊपर के नीचे
जो दिया जाएगा। हाँ। परंतु ऊपरी तन स्थिति ज्यादा है,
हाँ, बहुत लंबी है,
इसलिए वहाँ एक एक निषेक में कम माल आता है।
हाँ, और यहाँ पे निषेक
गुण श्रेणी तो लिमिटेड है, अंतर्मूर्त वाली होती है, उसमें उतना ही द्रव्य दिया जाता है, तो पर निषेक उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इसीलिए उसको गुण श्रेणी का गुणित प्रमाण में श्रेणी रूप रचना, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
कम है।
असंख्यात वा भाग है, क्योंकि गुण संक्रमण का भागहार असंख्यात गुणाहीन है भागहार। ये सब भागहार में बताते किसका कितना द्रव्य चला जाएगा, वो भागहार से उसको भाग दे दो, एक भाग प्रमाण द्रव्य संक्रमित हुआ, अपकर्षण भागहार से भाग दो, एक भागहार प्रमाण नीचे अपकर्षित हुआ। पहले उसको गुण संक्रमण भागहार किया कहा था, यहाँ अपकर्षण भागहार कह रहे, बात एक ही है, एक ही बात है ना। अपकर्षण होने वाला तो सब में चला जाता है, अपकर्षण जो द्रव्य हुआ है उसमें भी तीन भेद पड़ेंगे, एक उदयावली में दिया जाएगा, एक गुण श्रेणी में दिया जाएगा, और एक ऊपरी तन स्थिति में दिया जाएगा। संक्रमण सब जगह से होते हैं, गुण संक्रमण भी सब जगह से होता है, वो संक्रमण में भी कांडक रूप से होते रहते हैं, यही रुकते भी हैं। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तकनमो सदा देतहु अस्मे।
नमो यंतानं नमो चित्तानं नमो आजानं नमो वज्जानं नमो लोहे सुप्रसावनं नमो यंतानं नमो चित्तानं नमो आजानं नमो वज्जानं नमो लोहे सुप्रसावनं नमोरियंतानं नमो सिद्धानं नमायनं नमो वज्जानं नमो लोहे सुप्रसावनं नमोरियंतानं।